नमस्कार भारत, 12 जून दिन बुधवार, मैं हूं वात्सल्य राय। गुजरात के तट से आज टकरा सकता है चक्रवाती तूफान वायु, प्रशासन सतर्क।
साइक्लोनिक सर्कुलेशन वायु 12 तारीख की रात और 13 तारीख की मॉर्निंग के बीच में लैंडफॉल करेगा, तो कंपलसरी इवैक्यूएशन की भी तैयारी हमने रखी है।
उत्तर भारत में जानलेवा हुई गर्मी, ट्रेन में बीमार हुए 4 यात्रियों की मौत।
प्लेटफॉर्म में डॉक्टर ने चेक किया तो 3 को मृत घोषित कर दिया गया और 1 को गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया।
और हाईकोर्ट के आदेश पर डिटेंशन सेंटर से शनिवार को बाहर आए रिटायर्ड सूबेदार सनाउल्ला बीबीसी से खास बातचीत में बोले,
कोई मिस्टेक हो गया होगा, न्यायालय का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, मैं उसको फॉलो करूंगा, मेरे को पूरा भरोसा है मेरे को न्याय मिलेगा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान वायु महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कल एक बुलेटिन जारी किया जिसके अनुसार चक्रवाती तूफान कल रात गुजरात के तटीय इलाकों पोरबंदर और कच्छ से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान के और गंभीर रूप धारण करने की आशंका जताई है। तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। समुद्री तूफान से निपटने के लिए गुजरात प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। रूस में लोगों के भारी विरोध के कारण पत्रकार इवान गोलुनोव को रिहा कर दिया गया है। गोलुनोव पर ड्रग्स बेचने का आरोप था। रूस के गृहमंत्री व्लादिमीर कोलकोत्सेव ने माना कि गोलुनोव पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। गृहमंत्री ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले को देख रहे 2 वरिष्ठ अफसरों को बर्खास्त करने के लिए कहेंगे। मॉस्को में आपराधिक जांच कार्यालय से बाहर निकले गोलुनोव का वहां बड़ी संख्या में मौजूद उनके समर्थकों ने स्वागत किया। गोलुनोव ने कहा, समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि हो क्या रहा है। मैं खुश हूं कि न्याय हुआ और आपराधिक मामला वापस ले लिया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जांच जारी रहेगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि कोई और किसी और के साथ ऐसा न हो जैसा मेरे साथ गुजरा। ये थे रूसी पत्रकार गोलुनोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेता देशव्यापी हड़ताल खत्म करने और सैन्य सरकार के साथ फिर बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। इथियोपिया के एक मध्यस्थ महमूद दरीर ने संवाददाताओं को बताया कि बदले में सूडान की सेना राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष मध्यस्थ के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको के साथ प्रस्तावित समझौता दोनों देशों के हित में है। उन्होंने पत्रकारों को एक पन्ना दिखाते हुए बताया कि यह वही दस्तावेज है जिस पर मेक्सिको ने भी सहमति जताई है। हालांकि ट्रंप ने यह बताने से इनकार कर दिया कि दस्तावेज में क्या लिखा है। ट्रंप ने कहा, ये वही समझौता है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेक्सिको सही समय पर इसकी घोषणा करे। वे इसका अध्ययन करना चाहते हैं। यह बेहद साधारण समझौता है, यह एक पन्ना है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है और मेक्सिको और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा है। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग के लाखों लोग चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रात भर हांगकांग की विधायी परिषद के बाहर डेरा डाले रखा। इस विवादित संशोधन पर आज विधायी परिषद में चर्चा होगी। प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपराध करके हांगकांग भाग जाता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेजा जाएगा। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में कल सुनवाई पूरी हो गई। मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व जीवन के कारक हैं। संतुलन सही रहे तो नवजीवन के अंकुर फूटते हैं, संतुलन बिगड़े तो विनाश का खतरा बन जाता है। इस वक्त भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में जल तत्व यानी समंदर की ओर से खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि चक्रवाती तूफान वायु आज रात गुजरात के तटीय इलाके से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तट से टकराते वक्त 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी भार्गव पारीक।
गुजरात में आज रात से कल सुबह के बीच के अंदर वायु चक्रवात आने की पूरी संभावना है। अरबी समुद्र के अंदर लो प्रेशर होने के कारण ये वायु चक्रवात होने की संभावना है। ये गुजरात के अंदर इसको बहुत ही डेंजर इसलिए माना जा रहा है और सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि 1998 में इसी तरह से एक चक्रवात आया था जिसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी, और 10,000 लोगों की मौत होने के बाद प्रशासन ने उसमें से काफी सबक लिए हैं, और उसी के चलते इस बार हैम रेडियो के भी उपयोग किए जाएंगे, रेडियो के भी उपयोग किए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे न चालू रखा जाए उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इन सभी चीजों का खास तौर पे ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रशासन के ने जो कुछ गांव है 80 गांव को एडुकेट करने की शुरुआत कर दी गई है, वहां पे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम को यहां पे तैनात किया गया है। 20 हेलीकॉप्टर को गुजरात के अंदर तैनात कर दिया गया है एयरफोर्स के, ताकि यहां पे अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो उसके अंदर जल्दी से वहां पे पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा सके, और गुजरात के अलग अलग इलाकों के अंदर एहतियात के कदम बरतने शुरू हो गए हैं।
जानकारी दे रहे थे भार्गव पारीक, जो बता रहे थे गुजरात में प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया है। प्रशासन की तैयारियों की जानकारी के लिए भार्गव पारीक ने ही अमरेली के कलेक्टर आयुष ओक से बात की।
साइक्लोनिक सर्कुलेशन वायु 12 तारीख की रात और 13 तारीख की अर्ली मॉर्निंग के बीच में लैंडफॉल करेगा। उसमें महुआ से वेरावल और पोरबंदर तक उसका कहीं भी लैंडफॉल का लोकेशन हो सकता है। हमने काफी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्ट्रिक्ट में लिए हैं। 23 विलेजेस आइडेंटिफाई किए और 2 नगर पालिका जो अलोंग द कोस्ट है और जिसमें पानी भरने की संभावना है, ऐसे में हमने ऑलरेडी पब्लिसिटी करना दोनों तालुका में शुरू कर दिया है। लगभग 1.5 लाख जितने SMS ऑलरेडी हम कर चुके हैं और लगभग मैसेजेस रात को करेंगे। इसके अलावा लोकल न्यूज, केबल टीवी चैनल्स और लाउडस्पीकर के द्वारा हम सभी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। हम अपेक्षा रखते हैं कि सारे लोग अपने हिसाब से खुद ही हायर ग्राउंड पे वॉलंटरीली शिफ्ट हो जाए, ताकि हमको कोई कंपलसरी इवैक्यूएशन न करना पड़े। और कंपलसरी इवैक्यूएशन की भी तैयारी हमने रखी है, लगभग 60 जितनी GSRTC की बसेस को स्टैंड बाय रखा है कल सुबह के लिए। इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनकी भी बसेस हमने रिक्विजिट करके रखी है। हमने 8 सेक्टर्स बनाए हैं इन 23 विलेजेस में, जिसमें हमने टीम्स की रचना की है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कंपलसरी इवैक्यूएशन करेंगे। इसके अलावा 37 लोकेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं, जिन लोकेशंस पे हमारे शेल्टर होम्स होंगे, जहां पे फूड सप्लाईज, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सप्लाईज और बाकी सारी व्यवस्था वहाँ पूरी की जाएगी। तो इन केस रिक्वायर्ड हम ये सारे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं।
NDRF से लगा के और कितनी टीम खास तौर पे तैनात की गई है? और
रेस्क्यू टीम्स में 4 NDRF की टीम्स हमको ऑलरेडी मिल गई है, और इसके अलावा 2 आर्मी की टीम्स भी हमको आज रात तक आने वाली है। उन सभी को अपने अपने लोकेशंस पे तैनात कर दिया गया है। इन केस ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन हम उनका इस्तेमाल करेंगे और दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, और हमारा भी सारा सिस्टम अभी प्रिपेयर हो चुका है। PGVCL, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारे रोड्स की कनेक्टिविटी को चालू रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको टैकल करने के लिए हमारी टीम्स ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है।
बेहतर तैयारियों का कितना फायदा मिलता है, ये हाल में ओडिशा में फणी तूफान के वक्त दिखा था। ये थे अमरेली के कलेक्टर आयुष और उनसे बात कर रहे थे भार्गव पारिक। उधर उत्तर भारत के मैदानी राज्य गर्मी की चपेट में है। पारा लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बना हुआ है, गर्मी जानलेवा बन गई है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में पारा लगातार 46 डिग्री के ऊपर है। कल केरला एक्सप्रेस में 4 यात्रियों की मौत हो गई, इसे भी गर्मी का असर बताया जा रहा है। सुनिए भोपाल से शुरय नियाजी की रिपोर्ट।
सोमवार को नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रही केरला एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S8 और S9 में सफर कर रहे 4 यात्रियों के लिए यह यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई। यात्रियों की तबीयत गर्मी की वजह से ग्वालियर में बिगड़ गई थी, जिसके बाद झांसी पहुंचते पहुंचते इनमें से 3 की मौत हो गई। एक यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। झांसी रेलवे के PRO मनोज कुमार ने बताया,
केरला एक्सप्रेस में हमारे को सूचना मिली कि 3 अचेतावस्था में पैसेंजर हैं और एक ही गंभीर हालत में, तो तुरंत ही जो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया गया। प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर ने 3 को जब चेक किया तो 3 को मृत घोषित कर दिया गया उसी समय, और एक को गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। सभी यात्रियों की उम्र 70 तक लगभग 70 साल से ऊपर है जिनकी मौत हुई है। देखिए जो भी है उसके का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन फिर भी उम्र के हिसाब से और इसलिए लगता है कि हो सकता है कि प्राकृतिक ही है।
वहीं मौसम की मार से मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली पानी की कमी के साथ ही भीषण गर्मी ने ऐसी स्थिति बना दी है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। 12 तारीख से स्कूल खुलने थे, लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया है कि स्कूल 24 तारीख से खोले जाएं। ग्वालियर में सोमवार को तापमान 47.2 डिग्री पहुंच गया। इससे पहले इतना तापमान 1966 में दर्ज किया गया था। प्रदेश में नौगांव में 49 डिग्री तापमान पहुंच गया। भोपाल में सड़कों पर मौजूद लोगों ने गर्मी के बारे में बताया,
इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं देखी, इस साल विकराल गर्मी पड़ रही है। आदमी धूप से बचने के लिए कहीं पेड़ के नीचे कहीं अपने गमछे का उपयोग कर रहा है, बहुत तेज भीषण गर्मी का प्रयोग।
रोजी रोटी भी जरूरी है, पेट पालना भी जरूरी है, जो नित्य काम है, ऑफिस के काम है, फैक्ट्री के काम है, वो भी देखना जरूरी है। इस कारण से निकलना जरूरी है, लेकिन अपने आप को तरल रखने के लिए कुछ ना कुछ, कहीं गन्ने का रस पी लेते हैं, कभी नींबू पानी पी लेते हैं। दिन भर पेय पदार्थों को ज्यादा महत्वता देते हैं, ना कि भोजन को।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ऐसी तपिश जारी रहेगी, इसके बाद तापमान में कुछ कमी आने का अनुमान है। मंगलवार को भोपाल, सीहोर, विदिशा, गुना सहित प्रदेश के 40 जिलों में लू चली। शुरह न्याजी, BBC न्यूज, भोपाल।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
अगली खबर असम से। भारतीय सेना से रिटायर सूबेदार मोहम्मद सनाउल्ला बीते शनिवार को डिटेंशन सेंटर से रिहा हुए हैं। उन्हें बीती 23 मई को कामरूप ग्रामीण जिले की एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित किया था। अदालत के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार कर 29 मई को ग्वालापाड़ा जेल के अंदर बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद वो क्या कह रहे हैं, सुनिए दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
भारतीय सेना में 30 साल सेवा देने वाले रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद सनाउल्ला डिटेंशन सेंटर से जमानत पर घर जरूर लौट आए हैं, लेकिन जेल में बिताए उन 11 दिनों को याद करके वो आज भी मायूस हो जाते हैं। भारतीय फौज में जिस गर्व के साथ सनाउल्ला ने ड्यूटी की थी, डिटेंशन सेंटर पहुंचने के बाद वो कांप उठे थे। डिटेंशन सेंटर में अपने पहले दिन के अनुभव को BBC के साथ साझा करते हुए सनाउल्ला ने कहा,
तो रात का टाइम पे था, तकरीबन 8 बजे तक हम जाके पहुंचा। मेरा शरीर बिल्कुल टूट पड़ा कि टूट गया कि ये भगवान में कहाँ आया, कहाँ का वही मैंने क्या गलती कर दिया, मेरे को जेल का हवा खाना पड़ रहा है। थोड़ा सा शरीर कांपने भी लगा, जैसे तक कांपते कांपते मैंने हाथ मुँह धो के कपड़े को मैंने चेंज करके एक कंबल दिया, मच्छरदानी दिया, एक व्हाइट बेडशीट दिया, फिर ऐसे ग्राउंड में बस बिस्तर लगा के मैं सो गया।
दरअसल ग्वालपाड़ा की जेल में सनाउल्ला के साथ 200 से अधिक विदेशी घोषित कैदी थे। उन लोगों की तकलीफ सुनकर सनाउल्ला अपना खुद का दुख भूल गए।
मैं जब रूम से बाहर निकलता था तो कम से कम 50-60 आदमी आ गई, मेरे को पूछेगा भाई आप, मेरे से सजेशन लेते थे, सर मेरा ये चाहे था कैसा होगा, मेरा बाल बच्चा घर में है, बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया देखने के लिए नहीं आता। तो उनका कहानी सुनके बाद मेरा प्रॉब्लम उनका, मैं सोचता बापू बाप ये जिंदगी कैसा होगा यार, घर टूट गया, बाल बच्चा कहाँ है।
इस समय सनाउल्ला के घर पड़ोसियों से लेकर मीडिया के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उनसे मिलने वाले लोग भी हैरानी जता रहे हैं कि 30 साल सेना में काम करने वाला व्यक्ति विदेशी नागरिक कैसे बन गया। सनाउल्लाह अपने पास भारतीय नागरिकता से जुड़े सभी दस्तावेज होने का दावा करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास नागरिकता से जुड़े सारे कागजात हैं तो ट्राइब्यूनल को दिखाए क्यों नहीं, इसका जवाब देते हुए सनाउल्लाह कहते हैं,
ये भूल कैसे हो गई, मतलब जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है।
भूल हो गया, कोई मिस्टेक हो गया होगा या वो भी बोलना ठीक नहीं। न्यायालय का जो आदेश है, जो ऑर्डर है, मैं उसको फॉलो करूंगा, मेरे को पूरा भरोसा है मेरे को न्याय मिलेगा।
सनाउल्लाह की बड़ी बेटी शहनाज अख्तर पिता को विदेशी नागरिक घोषित करने की बात को लेकर काफी गम में है। शहनाज विदेशी नागरिक से जुड़े मामले में प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहती है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इंडियन आर्मी जब इंडिया के लिए सर्व करता है फाइनली फॉरेनर डिक्लेयर कर देना, मतलब ये ऐसा लगता है हार्ट, मतलब कलेजा जो है ना एकदम मतलब श्रिंक कर जाता है, तो वही अच्छा फील नहीं हुआ था उस टाइम। ठीक, मतलब कुछ सिस्टम की वजह से, उनका मैनेजमेंट की वजह से, जैसे आप चंद्रमल के बारे में शायद जानते होंगे, वो बॉर्डर पुलिस में थे, उनका जो काम करने का जो सिस्टम है उसी की वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है।
साल 2017 में सेना से रिटायर होने के बाद 52 साल के सनाउल्लाह असम पुलिस की बॉर्डर ब्रांच में बतौर सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे, लेकिन उनको विदेशी नागरिक घोषित करने के बाद बॉर्डर पुलिस ने सनाउल्लाह को हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उनसे वर्दी वापस ले ली है। ऐसे में अब इस मामले में सबकी नज़र गुवाहाटी हाईकोर्ट पर टिकी है। देखना होगा आने वाले समय में देश की फौज में काम करने वाला ये व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक साबित कर पाता है या नहीं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और अब जान लेते हैं कि आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। अखबारों के साथ मौजूद हैं दिनेश उप्रेती। जी दिनेश।
जी वासली जी, जैसा कि अभी हमने गुजरात से भार्गव पारिख और फिर मध्य प्रदेश से सुरैनिया जी की गर्मी से संबंधित और जो बदल रहा है तूफान संबंधित जो है खबरें जानी, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने गर्मी और लू पर IIT गांधीनगर की एक रिसर्च रिपोर्ट छापी है। उसके हवाले से लिखा है कि देश में जिस तरह से गर्म हवाओं के थपेड़े बढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तनाव और बेचैनी लोगों को परेशान करेगी। शोध के मुताबिक पिछले 30 साल में लू के थपेड़ों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और साल 2050 तक ये 8 गुना तक हो जाएगी। हीट स्ट्रेस बढ़ने की एक वजह यह भी बताई गई है कि तापमान बढ़ने के साथ साथ वातावरण में नमी भी बढ़ रही है।
जी, क्या यह भी बताया गया है कि इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कुछ उपायों की क्या कोई जानकारी दी गई है?
जी, उपाय यही है कि वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री के नीचे रखा जाना चाहिए, वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए और शेल्टर का निर्माण करना चाहिए, दैनिक व्यवहार में जो और बदलने की कोशिश करनी चाहिए और आपातकालीन सेवाओं का विस्तार करना चाहिए।
लेकिन ये विज्ञापन तक ही ज्यादातर सीमित चीजें दिखती हैं।
हाँ, इसको लागू करना,
और चिंता तभी होती है जब सामने कोई बड़ी मुसीबत दिखती है, चक्रवात हो या तापमान बढ़ता हो। जी, अगली खबर।
जी, भारतीय वायुसेना के लापता AN-32 हेलीकॉप्टर का मलबा अरुणाचल प्रदेश में देखे जाने की खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। वायुसेना का कहना है कि विमान का मलबा MI-17 हेलीकॉप्टर से 12,000 फुट की ऊंचाई पर देखा गया है। ये इलाका जो है यूं भी दुर्गम माना जा रहा है और इसके बावजूद जो है इस स्थल दुर्घटना स्थल तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण है। उस इलाके में घने जंगल हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए कमांडो को हेलीकॉप्टर से उतारे जाने की योजना है।
जी,
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार बाहरी एक्सपर्ट्स को नौकरियां देने की योजना बना रही है। 1/3 डिप्टी सेक्रेटरी बाहर से लाए जाने की योजना है। खबर के मुताबिक न केवल जॉइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव बल्कि लोअर डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी प्रशासन में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने PK मिश्रा, अजीत डोभाल और नृपेंद्र मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।
जी,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी करने और वीडियो साझा करने के मामले में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को तत्काल रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनी है।
जी दिनेश, ये खबर BBC हिंदी के पेज पर भी है। इनकी टिप्पणी प्रशांत की जो थी वो पत्रकारीय नैतिकता और मानकों पर कितनी खरी है, गिरफ्तारी इनकी सही थी या गलत, अगर हमारे श्रोता चाहें तो BBC हिंदी के पेज पर आके पढ़ सकते हैं।
जी, एक दिलचस्प खबर है कि विमान अपहरण की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास के अलावा 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है। विशेष NIA जज KM दवे ने कारोबारी बिरजू सल्ला को यह सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि विमान के चालक दल के उन सदस्यों और यात्रियों के बीच में बांटी जाए जो उस दिन विमान में सफर कर रहे थे। बिरजू सल्ला ने अक्टूबर 2017 में मुंबई से दिल्ली आ रहे जेट एयरवेज के विमान के टॉयलेट में अपहरण की धमकी भरा एक नोट लिख छोड़ा था।
जी,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक बनाने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के अंगूठे में चोट की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर
है। ये तो राष्ट्रीय चिंता भी इस समय एक तरीके से बन गई है क्योंकि वर्ल्ड कप में भारत को अगले दो मैच बहुत महत्वपूर्ण खेलने हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ।
जी
बहुत शुक्रिया दिनेश सुप्रेती, वक्त हमारे पास अखबारों के लिए इतना ही है।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
आगे बढ़ते हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला आज होगा। लंदन के एक कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने लंदन में मौजूद BBC संवाददाता गगन सभरवाल से बात की।
कल UK में नीरव मोदी का फोर्थ बेल एप्लीकेशन हियरिंग हाई कोर्ट में सुना गया। जो जज थी इंग्रिड सिमलर, उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। नीरव मोदी के लॉयर्स ने फिर से जो भी उन्होंने पहले बोला था वही रिपीट किया। उन्होंने बोला कि उनको बेल दिया जाए, उनको हाउस अरेस्ट में रखा जाए, ये भागने की कोशिश नहीं करेंगे, वो एक सीधे साधे इंसान है। उन्होंने नीरव मोदी को जूलियन असांज से कंपेयर करते हुए, उनके लॉयर्स ने बोला कि वो जूलियन असांज नहीं है, वो किधर भी नहीं जाएंगे, वो घर पे ही रहेंगे और वो इंग्लैंड छोड़ के नहीं जाना चाहते। वो एक डायमंड मर्चेंट है, एक रिप्यूटेड फैमिली से आए हैं और इसीलिए उनको बेल मिलनी चाहिए और वो एक हाई रिस्क, हाई फ्लाइट रिस्क किस्म के इंसान नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर उनको बेल मिलता है वो डेफिनेटली नहीं भाग के जाएंगे। उनके लॉयर्स ने इतना भी बोला कि उनके दोनों बच्चे UK आना चाहते, यहाँ पे हायर स्टडीज करना चाहते, तो इसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंडियन ऑफिशियल्स के लॉयर्स थे उन्होंने फिर से UK कोर्ट्स को बोला कि नीरव मोदी को बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि पहले नीरव मोदी ने £500,000 का बेल सिक्योरिटी अमाउंट ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने 1 मिलियन का बेल सिक्योरिटी ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने 2 मिलियन सिक्योरिटी ऑफर किया। इसका ये मतलब है कि नीरव मोदी के बाद बहुत सारा छुपा पैसा है, इंडियन ऑफिशियल्स के लॉयर्स ने बोला, और इसकी वजह से उनको लगता है कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि नीरव मोदी के पास इतना पैसा है कि वो पैसे से वो भाग के किसी और देश में चले जा सकते हैं जहाँ पे इंडिया के पास कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो इसीलिए इंडियन अथॉरिटीज के लॉयर्स ने बहुत फोर्सफुली बोला कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए।
कोर्ट का फैसला क्या होगा इसकी जानकारी आज मिल सकती है, ये जानकारी दे रही थी गगन सभरवाल। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान आर्थिक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। सरकार इसे आर्थिक तरक्की वाला बजट बता रही है तो विपक्ष इसकी आलोचना में जुटा है। पाकिस्तान के बजट को लेकर हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने इस्लामाबाद में मौजूद BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी से बात की।
ऑपोजिशन ने तो इस बजट को काफी क्रिटिसाइज किया है। मेन ऑपोजिशन पार्टीज है, उनका यही कहना है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। बजट जो है इसका जो साइज है वो पिछले साल के बजट से 30% बड़ा है और इस बार जो हुकूमत ने टारगेट किया है कि वो ज्यादा टैक्सेस जो है वो इकट्ठे करेगी। टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए न सिर्फ ये कि और टैक्सेस लगाए गए हैं इस बजट में, बल्कि हुकूमत ऐसी कोशिश कर रही है। एक थोड़े ही दिन पहले गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है जिसका मकसद यही है कि लोगों को इंकरेज किया जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें और टैक्स जो है वो ज्यादा इकट्ठा हो सके। लेकिन इस बजट के अंदर जहाँ पे कुछ तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और पेंशन बढ़ाई गई है, खासतौर पर छोटे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनकी, लेकिन साथ ही साथ में कुछ नए टैक्स भी लगाए गए हैं इस तरह की चीजों पे, जैसे खाने पीने की चीजों पे, दूध के ऊपर या कुकिंग ऑयल के ऊपर। इसके अलावा सिगरेट पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया, उनका कहना यही था के कोशिश सरकार की ये है कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए।
शुमाइला जी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद मुश्किल हालात से गुजर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार के पास खर्च चलाने के भी पैसे नहीं हैं। तो क्या लगता है ये बजट सरकार को कुछ राहत दे पाएगा, कुछ पैसा जुटा पाएगा सरकार के लिए?
देखें, इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इमरान खान ने कल भी एक शॉर्ट मैसेज जो है वो दिया था पूरी नेशन के लिए, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि जितनी इनकम है पाकिस्तान की सरकार की, उसका आधा पैसा जो पाकिस्तान में पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए हैं उस डेट सर्विसिंग में गुजर जाता है। हुकूमत के पास बिल्कुल इतनी गुंजाइश नहीं बचती है कि वो डेवलपमेंट कर सके, तो मुश्किल तो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमने ये देखा कि पाकिस्तान में हमेशा एक बहुत बात की जाती है और अंदाजे जिसके बारे में लगाए जाते हैं हमेशा के डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की फौज है उसने भी वॉलंटियरली, उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि फौज जो है उसके बजट में इस दफा डिफेंस बजट में वो कोई जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई है, और 1150 अरब रुपए का बजट पिछले साल था और इस साल भी वो वैसा ही रहेगा। फिर अपनी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो सैलरीज हैं वो 10% उसको कम किया है, जो बड़े आला सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया गया, तो कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन फिर पहले भी जो है वो हमने देखा पास्ट में ऐसी बातें तो बहुत होती रही हैं, ये डिपेंड तो इसी पे करेगा कि किस हद तक हुकूमत इम्प्लीमेंट कर पाती है और लोगों को टैक्स नेट में लेकर आ सकती है, ताकि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है वो इनकम में इजाफा हो।
पाकिस्तान के बजट को लेकर जानकारी दे रही थी इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। वर्ल्ड कप 2019 में अपने दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड को हराकर उलट फेर करने वाली पाकिस्तान टीम अगला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इस मैच में पाकिस्तान टीम की कोशिश मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जीत की लय बरकरार रखने की होगी। वहीं शुरुआती दो मैचों में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। भारत से मिली हार को भुलाकर ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान को वापस पटरी पर लाना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली।
ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी है कि उनके ओपनर अच्छे रन बनाएं, चीफ स्मिथ रन बनाएं, क्योंकि ये डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ बहुत क्रूशियल बल्लेबाज हैं, और एरन फिंच तो अपने अगर जिस दिन उनका बल्ला चल पड़े तो वो किसी भी घातक गेंदबाजों को गेंदबाजी को वो खत्म कर सकते। ऑस्ट्रेलिया 5 बार चैंपियन रह चुका है, तो आप सोचिए एक ऑल टाइम अगर आप लिस्ट बनाएंगे बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ऊपर है।
विजय लोकपल्ली। और अब जाने से पहले बात फुटबॉल की। पुर्तगाल ने हॉलैंड को हराकर नेशंस लीग कप खिताब जीत लिया है। पुर्तगाल ने ये मैच 1-0 से जीता। इस मैच में पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो कोई गोल नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उनकी टीम जीत हासिल करने में सफल रही। पुर्तगाल के लिए मैच का एकमात्र गोल गोंकालो ने 60वें मिनट में किया। ये पुर्तगाल का 3 साल में दूसरा मेजर खिताब है। और वहीं अगर भारतीय फुटबॉल टीम की बात करी जाए तो नए मुख्य कोच इगोर स्टिमैच के मार्गदर्शन में भारतीय फुटबॉल टीम 7 से 18 जुलाई तक अहमदाबाद में होने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल कप के पहले मैच में तजाकिस्तान से भिड़ेगी।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान वायु गुजरात की ओर बढ़ रहा है, और इसके आज रात तटीय इलाकों पोरबंदर और कच्छ से टकराने की आशंका है। रूस में लोगों के भारी विरोध के कारण पत्रकार इवान गोलुनोव को रिहा कर दिया गया है। गोलुनोव पर ड्रग्स बेचने का आरोप था। सूडान में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेता देशव्यापी हड़ताल खत्म करने और सैन्य सरकार के साथ फिर बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिको के साथ प्रस्तावित समझौता दोनों देशों के हित में है। हांगकांग के लाखों लोग चीन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।